पूज्य देवियों एवं सज्जनों, आप सबके श्री चरणों की धूलि का ये एक छोटा सा कण आपके श्री चरणों में बहु बार प्रणाम अर्ज करता है। मेरी बारंबार नत श्री वंदना स्वीकार कीजिएगा। पूज्य श्री ब्रह्मानी जी का आभारी हूं, धन्यवादी हूं। उन्हीं के कारण अमृतसर नगर में आगमन पर आप सबके मंगल दर्शन हो जाते हैं। अहो भाग्य मेरा। अभी आपने सबने मिलके अमृतवाणी संकीर्तन किया है। इसमें स्वामी जी महाराज ने राम नाम की महिमा गाई है। वही राम जो वेदों में ओम नाम से, ओंकार नाम से पुकारा जाता है, उसी परब्रह्म परमात्मा की महिमा स्वामी जी महाराज ने गाई है। वही राम जिसका गुणगान गुरवाणी ने गाया है, बाबा नानक जिस नाम की आराधना किया करते, कबीर साहब जिस नाम को गाया करते, तुलसी इत्यादि जिस नाम को गाया करते, वही नाम उसी राम नाम की महिमा का गुणगान आपने किया है। अवर्णनीय है। भगवान राम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, मैं भी इस राम नाम की महिमा का गुणगान सही ढंग से नहीं कर सकता। अपरंपार है इस नाम की महिमा। भाग्यशाली हैं वे सब जो इस राम नाम को जपते हैं। वह जिह्वा जो इस नाम को जपती है परम सौभाग्यशाली है। वह मन जो राम नाम में रमता है अतिशय भाग्यवान है। वह मन उस व्यक्ति के सौभाग्य की क्या सराहना की जाए जो तन मन से, बुद्धि से, हर प्रकार से परमेश्वर के नाम की आराधना में लगा हुआ है। एक महात्मा किसी घर में जाया करते। महात्माओं का काम ही यही है, उसे ही कहते हैं महात्मा। जो व्यक्ति को संसार से निकाल के परमेश्वर की ओर मोड़े उसे संत कहा जाता है, उसे ही महात्मा समझना चाहिए। जो धनवान को अधिक धनवान बनाता है उसे कैसे कोई महात्मा कहे। महात्मा तो वही है जो इंसान को मोह ममता के जंजाल से निकाल के तो परमेश्वर की ओर उनका रुख मोड़ दे, उसे ही महात्मा समझना चाहिए, वही संत है। बहुत दिनों से ये जाते हैं। बाकी परिवार तो सब अच्छा है, इनका स्वागत करता है, इनको ठीक ढंग से खाता खिलाता है, सेवा भी इनकी होती है ठीक ढंग से। लेकिन एक उस घर का पुत्र है, युवक, वह इनका प्रायः अपमान करता है, वह इन्हें अच्छा नहीं मानता। ऐसे ही संत महात्मा घूमते फिरते हैं। बहुत देख रखे हुए हैं इन जैसे संत महात्मा, खाने को कहीं नहीं मिलता तो इधर उधर घूमते फिरते हैं, इत्यादि इत्यादि इस प्रकार के अपमान भरे शब्द वह प्रयोग करता इस महात्मा के लिए। महात्मा मुस्कुराते रहते, जितने दिन उनको रहना होता बड़े प्रेम पूर्वक वहां रहते। एक दिन महात्मा ने सोचा, मेरे आने का क्या लाभ, यहां पर इतनी देर से आ रहा हूं यदि मैं इस बच्चे को बदल नहीं सका तो। बाकी तो सब ठीक है, जो अच्छे हैं उनसे क्या करना, जो बुरे हैं यदि उन्हीं को अच्छा ना बनाया जाए तो वह महात्मा किस काम का, वह संत किस काम का। उसकी संताई तो यही है ना कि जो बुरा है, जिसको लोग बुरा कहते हैं, वह महात्मा उसे बुरा ना मान के उसे अच्छा बना दे। आज इस युवक बाहर से कहीं से आया है, उसकी कलाई बड़े जोर से पकड़ ली। क्या है, बड़े जोर से अपनी कलाई को छुड़वाना चाहता है यह युवक। महात्मा भी अच्छे ताकत वाले थे, बड़े जोर से कलाई को पकड़ के रखा हुआ है, ये युवक छुड़ा नहीं पा रहा। बहुत जोर लगाता है, क्या चाहते हो आप। कुछ नहीं बेटा, ये कलाई मैं अभी छोड़ दूंगा, एक बार अपने मुख से राम बोल दो। नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो फिर कलाई भी नहीं छूटे। और जोर से महात्मा ने कलाई को पकड़ लिया। गुस्सा भी हो रहा है ये युवक, जोर भी लगा रहा है लेकिन अपनी कलाई छुड़वा नहीं रहा। महात्मा ने बड़े कष्ट के बड़े जोर से हाथ को पकड़ा हुआ है। जब थक गया, ठीक है राम, विवशतापूर्वक एक बार राम मुख से निकलवा दिया महात्मा ने, कलाई छोड़ दी, जाओ आप, फिर कभी अपनी शक्ल ना दिखाना, ऐसे अपमान भरे शब्द अभी भी महात्मा ने के लिए प्रयोग किए हैं इस युवक ने। जाने से पहले बेटा एक प्रार्थना करता हूं तेरे से, कि जो आज तूने विवशतापूर्वक गलती से कैसे भी समझो ये राम नाम लिया है, कभी भी अवसर आवे तो इसका कभी मूल्य ना लेना, इसे बेचना ना। बड़ी अद्भुत सी बात उस महात्मा ने इस युवक को कह दी, संभवतया उसे समझ ही नहीं आई कि क्या अर्थ है इस प्रकार का, इस बात का क्या अर्थ होगा, कभी इसे बेचना ना, व्यापार नहीं करना इसका। ठीक बात है, शादी हुई, भोगी जीवन है, विलासी जीवन है, अविवेकी जीवन है, धन उपार्जन में लगा हुआ है, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं, भूल से एक बार जिंदगी में राम नाम लिया गया, लिया गया, उसके बाद कभी राम नाम कभी मुख से निकला नहीं, जीवन बहुत अच्छा नहीं, भोगी विलासी जीवन रहा है, बेईमानी का जीवन, अत्याचार अन्याय का जीवन रहा है, शरीर जल्दी ही क्षीण हो गया, असंयमी जीवन था, शरीर जल्दी ही जर्जर हो गया, बुढ़ापा जल्दी ही आ गया, मृत्यु भी जल्दी ही आ गई, मर गए, यमदूत लेने के लिए आए, मारते पीटते ले गए इन्हें यमराज के पास, कहा महाराज इस पापी पुरुष ने जिंदगी में पाप से अतिरिक्त कुछ नहीं किया, हां एक बार एक महात्मा के सामने उनके कहने पर राम शब्द कहा था, राम बोला था ये, अन्यथा ये महात्माओं का अपमान, भगवान का अपमान, बड़ा पापी जीवन रहा है महाराज इसका, घोर पापी है ये, अपमान भरे शब्द, महात्माओं का तिरस्कार, सत्संग का तिरस्कार करता रहा है। ठीक है, यमराज ने कहा भाई आपने जिंदगी में एक बार राम कहा है, भगवान के नाम का उच्चारण किया है, आप इसका क्या फल चाहते हो, क्या मूल्य इसका लेना चाहते हो, उसके बाद जैसे ही आपको ये मूल्य फल मिल जाएगा उसके बाद तो आपको नरक की यातनाएं ही मिलेंगी, आपका जीवन अतिशय पापी रहा है। महात्मा के शब्द याद आए, महात्मा ने कहा था कभी इसे बेचना ना, कहा महाराज मैं इसका मूल्य लेना नहीं चाहता, पर आप मुझे इसका मूल्य बताएं कि मूल्य क्या है इसका, मैं इसका फल देखना चाहता, मैं इसका फल लेना नहीं चाहता, पर आप मुझे इसका जो फल है जो मूल्य है वह बताएं क्या मूल्य है इसका। यमराज बेचारे विभ्रांत हो गए, कंफ्यूज हो गए, राम नाम का मैं क्या मूल्य बताऊं मुझे भी पता नहीं है। यमराज ने कहा भाई बड़ी दुविधा में आपने डाल दिया मुझे, कभी किसी ने ऐसा प्रश्न मेरे से किया ही नहीं, आज पहली बार कोई एक व्यक्ति आया है जो मेरे से राम नाम का मूल्य पूछ रहा है, क्या मूल्य है इसका मुझे मूल्य बताइएगा, मैं इसका मूल्य लेना नहीं चाहता, मुझे पता नहीं भाई, इसलिए देवराज इंद्र के पास जाना पड़ेगा। युवक होशियार, उसको पता लग गया कि यह कोई बड़ी बात है, इसलिए यमराज से कहता है ठीक है महाराज जहां भी आपको ले जाना हो मुझे ले जाइएगा, लेकिन मेरे लिए एक पालकी मंगवाइएगा। युवक के लिए पालकी मंगवाई गई, जो उठाने वाले थे उनमें से एक को हटा के कहने लगे यमराज आप भी आइएगा, आप इस पालकी को उठाइए, मानो उसका थोड़ा अपर हैंड हो गया जीव का जो वहां गया हुआ है युवक का, अपने आप को वह उत्कृष्ट मानने लग गया है, देखो मैंने क्या कर दिया है जिसका फल जिसका मूल्य इनको पता नहीं है। यमराज बेचारे पालकी को उठा ले, देवराज इंद्र के पास गए, समस्या रखी। देवराज इंद्र कहते हैं यमराज ये इसका मूल्य तो मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, युवक पालकी में बैठा हुआ देवराज इंद्र को भी कहता है आप भी पालकी में जुड़ जाइएगा। एक तरफ से पालकी देवराज इंद्र ने उठाई है, एक तरफ से यमराज जी ने उठाई है, और दो और व्यक्ति हैं उस पालकी को, कोई दिव्य पुरुष ही होंगे वह भी पालकी को उठाए हुए। ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्होंने भी कहा भाई मुझे भी पता नहीं है ये राम नाम का मूल्य क्या है। युवक कहता है ठीक है महाराज, आप भी इन जैसे ही हैं, आप भी आइएगा पालकी उठाइएगा। तीनों महादेव पालकी को उठाए हुए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास चले जाते। वह तो जानते ही होंगे इसका क्या मूल्य है, वह तो सतत राम स्मरण करते हैं, दिन रात राम नाम जपते हैं, और जाते ही जब उनके सामने ये समस्या रखी गई, भगवान शिव ने कहा भाई जपता तो हूं मैं दिन रात, लेकिन मैं भी इसका मूल्य नहीं जानता, मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी कि राम नाम का कोई मूल्य भी पूछना चाहिए, कोई जानना चाहिए कि राम नाम का क्या मूल्य होता है। ठीक है महाराज, आप भी आइएगा, एक जगह खाली है, आप भी पालकी उठाइएगा। चारों पालकी उठाए हुए वैकुंठ में पहुंच गए। भगवान नारायण अतिशय प्रसन्न हुए ये सब कुछ देख के, मुस्कुरा के कहते हैं इन चारों को जिन्होंने पालकी को उठाया हुआ है, इस युवक को मेरी गोदी में बिठा दीजिएगा, जिस व्यक्ति को आप चार महादेवों ने उठाया हुआ है वह मेरी गोद का अधिकारी बन जाता है, इसे मेरी गोदी में बिठा लो। देवगण वापस चले गए हैं। कहानी सुनाने वाले भक्तजनों इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, हो सकता है ये कहानी कल्पित हो, लेकिन राम नाम की महिमा सत्य है। राम नाम की महिमा जो इससे हमें प्रतीत होती है वह झूठी नहीं है, वह कल्पित नहीं है, वह परम सत्य है। लेकिन ये बात तो हुई परलोक की, मरने के बाद राम नाम जपने वाले को क्या मिलता है ये तो बाद की बात है, और इसको कौन जानता है, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं ना माताओं सज्जनों, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, पढ़ी लिखी बातें हैं, कोई आके तो बताता ही नहीं है ना कि हम वैकुंठ में चले गए या वहां चले गए या ये हुआ, राम नाम इतने लाखों की करोड़ों की संख्या में आपने जपा है और आपको ये धाम मिल गया है, ये कोई आके बताने वाला नहीं है। बात तो इस लोक की है, इस लोक में राम नाम क्या करता है, परलोक की बात क्या करती माता, परलोक में क्या होगा हमारा, यहां अशांत जीवन है, चिंतित जीवन है, व्याकुल जीवन है, छोटी छोटी बात पर हम डामाडोल हो जाने वाला हमारा जीवन है, यदि यहां जीवन इस प्रकार का चल रहा है तो परलोक की कौन बात करे, वहां जाके क्या होता है क्या नहीं होता, यहां राम नाम क्या करता है। साधक जनों यदि विश्वास है, बात तो सारी विश्वास की है, तो मैं ही प्रश्न पूछूंगा यदि परलोक में राम नाम इतना कुछ करता है तो इस लोक में राम नाम क्या नहीं करता। विश्वास नहीं है तो आपने एक अनमोल हीरा भी यदि अपनी जेब में डाल रखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितनी कीमती चीज है, तो आप दरिद्री कंगाल, आपके पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, हालांकि आपके पास एक बहुत बड़ा हीरा, अनमोल हीरा पड़ा हुआ है। कोई बताता है अरे तुम मूर्ख, ऐसे ही फजूल में कंगाल बना हुआ है, दरिद्री बना हुआ है, तू जानता ही नहीं तेरे पास कितना अनमोल रत्न पड़ा हुआ है। मात्र जानकारी से वह इतना प्रसन्न होता है कि थोड़े समय के लिए उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, वह गरीब नहीं रहता, वह कंगाल नहीं रहता, अरे मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा शहंशाह हूं, मात्र जानकारी से कि मेरे पास इतनी अनमोल चीज है। हां जब किसी जौहरी के पास चला जाता है, उसका मूल्य ले लेता है, उसके पैसे ले लेता है, तो उससे कंबल भी खरीद लेता है, मकान भी बना ले लेता है, कपड़े भी ले लेता है, सारी दुख जिंदगी के दुख उसके दूर हो जाते हैं। भक्तजनों यही हाल हमारा है, राम नाम होते हुए भी हम कंगाल हैं, क्यों, इसलिए हमने उसकी महिमा को ना जाना है और ना ही कभी राम नाम का मूल्य ही आंका है, उसकी वैल्यू ही कभी हमने प्राप्त नहीं करी, जाके किसी के पास की ये कितना अनमोल चीज है, इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए अशांत हैं, इसीलिए चिंतित हैं, इसीलिए व्याकुल बेचैन रहते हैं। छोटी छोटी बात पर गुस्से हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, छोटी सी मुसीबत आ जाती है, आए ढह गए। जानते नहीं कितनी अनमोल चीज है आपके पास। आज भक्तजनों, बहुत सी बातें ना करके एक बात आपकी सेवा में विशेषता मुख्यता वर्णन करी जाएगी। परमात्मा से जो दूर ले जाए उसे कुसंग कहिएगा। वो व्यक्ति हो सकता है, आप कुसंगति में पड़ गए, किसी शराबी के पास, किसी जुआरी के पास, किसी पापी के पास, किसी व्यभिचारी के पास कुसंग में पड़ गए तो परमात्मा से विमुखता हो गई। जो परमात्मा से विमुख करे, उस निरंकार परब्रह्म परमात्मा से जो दूर ले जाए उसे कुसंग कहा जाता है। वह विचार भी हो सकता है, वह आपका व्यवसाय भी हो सकता है। हर व्यवसाय का व्यक्ति परमात्मा के पूजन को अच्छा नहीं मानता, समय ही नहीं है उनके पास। परमेश्वर की कृपा माननी चाहिए उन व्यक्तियों को जिनको परमेश्वर ने राम नाम जपने का सुअवसर प्रदान किया है। वह अध्यापक हैं या डॉक्टर हैं, ऐसी डॉक्टरी भी कुसंग यदि वह परमात्मा से विमुख कर देती है, ऐसा व्यवसाय कुसंग मानना चाहिए जो परमात्मा से आपको दूर कर दे। ऐसे कुसंस्कार जो भीतर बैठे हुए हैं, आप ही मेरी माताओं प्रायः शिकायत करती हो, आज सुबह ध्यान बहुत अच्छा लगा था, शाम को ध्यान ही नहीं लग रहा। मानो कोई अपना ही पाप संस्कार, अपना ही कुकर्म जो भीतर इकट्ठा हुआ हुआ है, संचित हुआ हुआ है, वह सामने आड़े आ गया है और वह आपका ध्यान, आपका मन राम भजन में नहीं लगने दे रहा। ऐसा संस्कार कुसंस्कार भी कुसंग। ऐसी पुस्तक जो आपको विचलित कर दे, अरे नहीं नहीं क्या रखा है राम नाम जपने में, छोड़ो इसको, मात्र राम नाम रटने से क्या होता है, वह भी कुसंग। ऐसा विचार कभी मन में आए, ऐसी कामना कोई जागृत हो जाए, ऐसे विकार, व्यक्ति कामी होता है उस वक्त राम याद नहीं आता, व्यक्ति क्रोधित होता है उस वक्त राम नहीं याद आता, आपके अंदर ईर्ष्या होती है किसी दूसरे के प्रति, आप किसी का बिगाड़ना चाहते हैं, आप किसी को नीचा गिराना चाहते हैं, आप किसी को छोटा बनाना चाहते हैं, आप अभिमानी होते हैं, उस वक्त परमात्मा की याद नहीं आती आपको, उस वक्त तो आप होते हैं हम सारे के सारे विकार। आप सहमत हो मेरे साथ, आपने अपने अपने घरों में कुसंगति का प्रताप देखा हुआ है, विनाश कर घर बर्बाद हो जाते हैं इस कुसंगति के कारण। अपने जवान पुत्र जवान बेटियां कुसंग के कारण माता पिता के माथे पर बहुत बड़ा कलंक लगाने वाली बन जाती हैं, सर्वनाश को प्राप्त। अच्छा भला था जब से उस लड़के के साथ इसने घूमना शुरू किया है, शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, घर में लड़ाई झगड़े भी करता है, जीना हमारा हमारा आराम कर रखा है। इस कुसंग सर्वनाश को प्राप्त कराता है। एक कौवे की दोस्ती हो गई एक हंस के साथ। आज उसे मना के कौवा अपने घर ले आया है। कहां है घर इसका? एक बबूल का पेड़, किक्कर का पेड़ जिसे कहते हो आप, वहां पर उस हंस को ले आया है। हंस को बू आ रही है वहां से। कौवे को कहता है, मित्र ये यहां रहना मेरे लिए मुश्किल है, तू कहता है रात बितानी है मुझे आपके साथ, नाइट स्टे के लिए आया हुआ है हंस मित्र कौवे के साथ, यहां रहना मुश्किल है, चल कहीं और चलते हैं। कौवा हंस को राजा के उद्यान में ले गया है, राजा के बगीचे में ले गया है। दोपहर का समय है, जहां राजा विश्राम कर रहे हैं उसी पेड़ पर जाके कौवा एवं हंस दोनों बैठ गए। हंस तो आप जानते ही उस साधु स्वभाव का होता है, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला होता है। देखा राजा के सिर पर कहीं से धूप आ रही है, बेचारे से देखा नहीं गया इसलिए अपने पंखों को फैला दिया ताकि राजा को छाया मिल जाए। उसी वक्त कौवे ने अपना दुष्ट स्वभाव है उसका, कुसंग है, दुष्ट स्वभाव वाला है, कनिंग है कौवा, इसलिए विष्ठा कर दी और वह राजा के सिर के ऊपर। मंत्री ने बंदूक मारी, ये तो बड़ा तेज है, कौवा काबू नहीं आता, ये बंदूक से नहीं मरता। उड़ गया तत्काल, बेचारा हंस फड़फड़ाता हुआ नीचे आ गया। आके कहता है जिसने विष्ठा की वह मैं नहीं, फड़फड़ाता हुआ वह नीचे आया है जिसने राजा के ऊपर पंख फैलाए हुए थे छाया करने के लिए। किसी ने प्रश्न किया, हंस फिर मृत्यु क्यों, सर्वनाश को क्यों प्राप्त हुए? हंस कहता है कौवे के कुसंग के कारण। कुसंगति हर एक को सर्वनाश देके रहती है। राम नाम इस कुसंग से व्यक्ति को बचाता है। जितने भी प्रकार के कुसंग हैं हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार का कुसंग है, वह सांस सिर पर बैठी हुई है, वह भी कुसंग यदि वह आपको सत्संगति से दूर करती है, परमात्मा से दूर करती है, वह पति भी कुसंग यदि वह परमात्मा से आपको दूर करने वाला है। कुसंग सर्वनाश देके रहता है। एक शरारती लड़का है मथुरा का, छीतू नाम है। नाम देखें कितना सुंदर है, छीतू। एक मंडली सी बना रखी है, 20 वर्ष की आयु होगी। अपनी उम्र के कुछ लड़के इकट्ठे किए हुए हैं, एक मंडली बनाई हुई है। क्या काम है? एक ही काम, जितने संत महात्मा मथुरा यात्रा के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए भगवान के आते हैं, भगवान के जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जाना। वे रास्ता पूछें ना पूछें, उनको बताएं जन्मभूमि इस तरफ नहीं है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में उनको भेजने वाले, ये इनका काम है। नित नई योजना जिससे संतों महात्माओं को दुखी किया जाए। सोचो आप क्या परिणाम होगा इस चीज का। होते हैं लोग ऐसे। आज अपनी मंडली को किसी और बड़े उच्च कोटि के महात्मा के पास ले गए हैं। सुना है वह महात्मा बड़ा ऊंचा, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, बहुत कोशिश करने पर भी उसे कोई क्रोधित नहीं कर सकता। चलो आज उसे जरा क्रोधित करके आते। चार पांच लड़के, छह लड़के चले गए, जाके उस महात्मा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कुछ छोटे सिक्के लेके गए हुए थे भगवान, उनके आगे रख दिए। एक स्नान मारता हुआ नारियल भी ले गए हुए थे, वह भी उनके चरणों में रख दिया। महात्मा मुस्कुराए, मुस्कुरा के युवक की ओर देख के कहते हैं, शाबाश बेटा, बहुत बड़ा उपदेश दे चले हो मुझे। उपदेश? कैसा उपदेश? बैठो मेरे पास। इन चार पांच लड़कों को, मुख्यतः छीतू, संत महात्मा की दृष्टि औरों पर नहीं है, छीतू पर है, जो मूल है, इन सबको बिगाड़ने वाला है, उसके ऊपर महात्मा की दृष्टि है, और जिस पर महात्मा की दृष्टि हो जाती है वह महात्मा हो जाता है। बैठ बेटा इधर मेरे पास। तू कहता है उपदेश नहीं, मैं कहता हूं तू मुझे बहुत बड़े उपदेश दे चला है। खोटा पैसा, ये खोटे सिक्के मेरे लिए मेरे सामने रख के यही मुझे समझाना चाहते हो ना? ये संसार सारा खोटा ही खोटा है, एक राम नाम सत्य है। शाबाश बेटा, पीठ पर थप्पी दी। ये सड़ा हुआ नारियल भी मेरे पास रख चले हो, यही मुझे बताना चाहते हो ना? जितनी भी संसार की खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य वस्तु हैं, खाने वाली चीजें हैं, एक ना एक दिन गल सड़ के रहेंगे, और जो इनको शरीर खाने वाला है वह भी इसी गति को प्राप्त होता है, वह भी एक दिन गल सड़ के रहेगा। बेटा इसलिए आगे की बात मैं कहता हूं, ये शरीर गलने को आ जाए, ये शरीर सड़ जाए, इससे पहले ही राम नाम का सिमरन करना चाहिए। छीतू के अंदर एक बिजली सी जैसे दौड़ती है वैसे उसका हाल हो गया। आज महात्मा ने मात्र उसे अपना प्रेम ही नहीं दिया, महात्मा से उसने क्षमा ही प्राप्त नहीं करी, महात्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें राम मंत्र भी दे दिया। आज छीतू घर नहीं जा रहा, आपके श्री चरणों में महाराज मैं बैठ के राम नाम का आराधन करूंगा। संतों महात्माओं की दृष्टि और राम नाम का प्रताप, कितनी बड़ी दुर्गति से बचा दिया राम नाम ने। एक संत के संग ने, मेरी माताओं संत का संग मिले ना मिले, संत द्वारा दिया गया राम नाम भी सत्संगति का काम करता है। सच मानिएगा इस बात को, हर कोई संत नहीं होता, पर राम नाम तो राम नाम ही होता है। वह संत नहीं है, राम नाम कुराम नाम नहीं है, वह राम नाम ही है, इसलिए उसकी सत्संगति से लाभ लीजिएगा।
सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति Thank you।